प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए नित्य स्वाध्याय प्रवचन में हम लोग प्रश्नोत्तरी मणिरत्न मालिका पर विचार कर रहे थे। पहला प्रश्न, अपार संसार समुद्र मध्ये समज्जतो मे शरणं किमस्ति, गुरो कृपालो कृपया वदैतत् विश्वेसि पादाम्बुज दीर्घनौका। एक जिज्ञासु आचार्य के चरणों में बैठकर प्रश्न कर रहा कि संसार कैसा है। अपार संसार समुद्र मध्य, संसार का पार पाना असंभव है। यही हमारी भूल है कि हम अपने इंद्रियों के द्वारा अपने सीमित शक्ति संसाधन और सीमित समय, दोनों सीमित है, शक्ति भी सीमित समय भी सीमित, और संसार कैसा असीम है, अपार मतलब असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं। तो हमारे पास भगवान ने शक्तियां सीमित दी है, आंख की देखने की शक्ति सीमित है, कान से सुनने की शक्ति भी एक सीमित है। बहुत अधिक सुनते सुनते कान थक जाता, आंखें भी थक जाती, आप कहते अब आराम करो। ऐसे पैर में चलने की शक्ति भी सीमित, मन बुद्धि के विचार करने की शक्ति भी सीमित है, पर हम लोग इस सीमित शक्ति और समय भी सीमित है। 24 घंटा से 25 घंटा हो नहीं सकता, लाख प्रयास करो 24 ही घंटा रहेगा। 24 में से 12-14 घंटे और नित्य क्रम में जाने ही है, सोना, स्नान करना, आराम करना। अब आपके पास 10-12 घंटे बचे, इस 10-12 घंटे में आप इस अपार संसार को पार करने में उपयोग करो या परमात्मा को प्राप्त करने में। तो जीवात्मा की यह भूल है कि हम इस सीमित शक्ति, जो हमारी ऐन्द्रिक सीमित शक्तियां हैं और सीमित समय है, इसके द्वारा इस संसार को उपलब्ध हो जाएंगे, संसार सागर को पार हो जाएंगे। यही भ्रांति इसी बात को बता रहे कि अपार संसार, संसार का मतलब होता है सम उपसर्ग है, श्री गतौ धातु, दोनों को मिलाकर संसार बनता है। सम मतलब सम्यक प्रकारेण, अच्छी तरह से निरंतर। श्री गतौ का अर्थ है संसरति गच्छति इति संसार। यह संसार नदी प्रवाहवत नित्य ही प्रवाहित हो रहा। हम लोगों का जीवन यह कैसा है तो प्रारब्ध के वेग से प्रवाहित हो रहा है। जिस प्रकार से एक नदी होती है, नदी के दो किनारे होते, उनको तट बोलते, किनारा, उन दोनों किनारों के बीच से जल प्रवाह का नाम नदी है। जहां पर गंगा की परिभाषा की गई वहां लिखा भागीरथ खाता व छिन्न, जल प्रवाह का नाम गंगा। भागीरथ महाराज जो चल रहे आगे आगे पीछे से जल प्रवाह है, उसी का नाम गंगा। तो हमारा जीवन भी दो किनारों के मध्य से प्रवाहित हो रहा। वह दो किनारा क्या? द्वंद। द्वंद बोलते सुख दुख, राग द्वेष, मान अपमान, निंदा स्तुति, अपना पराया, शत्रु मित्र। पर हम बुद्धिमानी क्या करना चाहते, एक किनारे को तो कसके पकड़ना रखना चाहते, जो अनुकूलता है, राग है, सम्मान है, स्तुति है, अपना है, उस किनारे को तो हम बहुत ही कसकर दोनों हाथ से, आंख से, कान से, इंद्रियों से पकड़ के रखना चाहते, और सारी शक्ति अपना समय दूसरे किनारे को मिटाने में लगाते रहते, इसी का तो नाम जीवन है भाई। शत्रु को मिटाओ, पराये को हटाओ, अपमान को दूर करो, निंदा नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते कि एक किनारे को पकड़ के रखना चाहते, दूसरे को मिटाने में लगे रहते, यही हमारी भूल। यदि नदी का एक किनारा बिखर जाएगा तो वह नदी नदी नहीं बल्कि तालाब बन जाएगा। तो जो हमारा जीवन है द्वंद से गुजर रहा, तो ये जो द्वंद है, द्वंद रूपी समुद्र में जो हम लोग बार बार ऊपर नीचे, कभी राग कभी द्वेष, कभी सुख कभी दुख, कभी शत्रु कभी मित्र, इसी का नाम संसार सागर है। तो संसार सागर के बीच में समझ तो आप बार बार प्रारब्ध कर्मानुसार गोते लगा रहे हैं। शिष्य ने पूछा, शरणम किमस्ति हे गुरुदेव, इससे बचने का उपाय क्या है, अभी संसार सागर से पार कैसे जाएंगे। गुरु शब्द का प्रयोग किया, गुरु शब्द का परिभाषा कठोपनिषद में स्वयं भगवती श्रुति करती है, परिच्छलोकान करम चीतान निर्वेद माया नास्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थ गुरु मेवाओ अभिगच्छेत। गुरु कैसा हो, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम समित पाणी गुरु मेवाओ अभिगच्छेत। पर गुरु का विशेषण है श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। हिंदी का दो बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ है जिसका नाम वृत्ति प्रभाकर और विचार सागर, इसके कर्ता है स्वामी निश्चल दास जी, बड़े अच्छे महापुरुष हो गए कबीर पंथ के। उन्होंने विचार सागर में सिद्ध किया कि सद्गुरु को श्रोत्रिय होना परम आवश्यक है, श्रोत्रिय होना ही चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो भी काम चल जाएगा। दृष्टांत दिया कि जैसे आपको बद्री विशाल जाना है, भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करना है, तो आप रेलवे काउंटर पर जाते हैं, वहां पूछते हैं कि बताओ बद्री विशाल जाने के लिए कितनी ट्रेनें हैं, कितना किराया है, किस रास्ते से गाड़ियां जाएंगी, हम कब पहुंचेंगे और आने का रास्ता क्या है। स्टेशन मास्टर टिकट अधीक्षक जीवन में कभी भी बद्री विशाल नहीं गया, हरिद्वार भी नहीं गया, परंतु वह आराम से बता सकता है कि श्रीमान जी फला फला गाड़ी है, फला समय है और फला रास्ता से गुजरती है, इतने बजे पहुंचेगी, वहां से गाड़ी रिटर्न होने वाली है। भले वह टिकट मास्टर जीवन में कभी गया ही नहीं, हरिद्वार भी नहीं गया, बद्री विशाल की तो बात ही क्या, फिर भी उसके बताए रास्ते चलेंगे तो आप आराम से पहुंच जाएंगे। पर एक व्यक्ति 25 बार गया बद्री विशाल, उसको अनुभव है, परंतु उसके बताए से आप पहुंच नहीं पाएंगे, बोलेगा इंगे जाओ उंगे जाओ, इधर से जाना, वहां से गाड़ी मिलेगी, तो भटक जाएंगे। इसलिए सदगुरु को श्रोत्रिय होना बहुत आवश्यक है और ब्रह्मनिष्ठ हो तो बहुत अच्छी बात, सौभाग्य। पर आप सभी का सौभाग्य प्रेम पूरी श्रोत्री मंडल का, यहां जो महापुरुष है श्रोत्रिय भी है और ब्रह्मनिष्ठ भी, अनेक महापुरुष आते हैं और आपको सत्संग का लाभ सुनाते। जिस प्रकार से मधुमक्खी नाना प्रकार के फूलों से पराग को चुन लेती है और चुनकर बहुत सुंदर मधु का निर्माण करती, ऐसे ही विद्वान हजारों ग्रंथों को अध्ययन करके, न्याय है, व्याकरण, मीमांसा, षट शास्त्र, वेद वेदांत, फिर आप उसी के सार को सत्संग में उड़लते हैं तो आप कितने भाग्यवान हैं। मतलब कि पकी पकाए फल को, जिसको बोलते निगम कल्प तरुर गलितम फलम, यह उपलब्ध होता है। तो गुरु कैसा, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। आज हम लोग जो टीका टिप्पणी करते हैं उसमें हमारा दोष है, गुरु को छान कर करना चाहिए और पानी नहीं, गुरु को जानकर पानी को छान कर। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर जिज्ञासा करना चाहिए। क्या जिज्ञासा? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म शब्द का अर्थ सच्चिदानंद, हमारे जीवन के परम लक्ष्य का नाम ये ब्रह्मा। ब्रह्मल सत चित आनंद, प्रत्येक प्राणी अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहता। एक आदमी बड़ा बीमार है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया अब बचने की गुंजाइश नहीं, वह भी बार बार प्रार्थना करता है, डॉक्टर साहब आप मेरे लिए भगवान हो, कोई न कोई प्रयास करो, जैसे भी हो बचा लो। मतलब वो भी मरना नहीं चाहता, अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता। इसी का नाम है सत्य। चित मतलब की ज्ञान और आनंद, इसी का नाम ब्रह्म है। तो वह गुरुदेव से पूछता है कि हे गुरुदेव, आप बड़े कृपालु हैं। कृपालु मतलब कारुणिक, बिना किसी प्रयोजन के जो करुणा भाव है उसका नाम है कृपालु। जिस प्रकार एक महात्मा जी नदी में नहा रहे थे, जैसे सात डुबकी लगाकर निकलने जा रहे, इतने में एक बिच्छू दिखाई दिया, बेचारा छोटा सा वृश्चिक, कुछ भंवर में घूम रहा, दया आ गई, बेचारा मर जाएगा। वह करुणा करके उसको हाथ से बार बार निकालते, इतने में वह डंक मार देता, हाथ से गिर जाता। इस प्रकार से कई बार वह जो है ना बिच्छू को निकालते रहे, वो डंक मारता पानी में गिर जा। बाहर एक आदमी देख रहा था, बोला बाबा जी इसकी तो आदत है डंक मारना, छोड़ दो, मरने दो इसको, डूबने दो। बाबा जी ने कहा देख भाई, जो नन्ना मुन्ना छोटा सा प्राणी यह भी अपने स्वभाव को छोड़ नहीं रहा, तो मैं तो महात्मा हूं, हम क्यों अपने स्वभाव को छोड़े? हमारा स्वभाव है सबका उद्धार करना, कल्याण करना, इसी का नाम है दयालुपना। तो कहे गुरुदेव आप बड़े दयालु कृपालु हैं, कृपया कृपा करके बदा आप बदलाइए कि संसार सागर से हम पार कैसे होवे। हम लोगों को भी यही जिज्ञासा है कि संसार मतलब कि दुख रूपी सागर से, इसको बोलते शोक सागर, तो शोक सागर से कैसे हम पार होवे। तब आचार्य ने कहा, आचार्य कौन? आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, जो साक्षात भगवान शंकर के ज्ञानावतार है। व्याचार्य शंकर कहते, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। जिस प्रकार नौका आपको बड़े आराम से सागर से पार लगा देती, आपको केवल मौका निकालकर नौका में बैठ जाना, कुछ करना थोड़े, आपने मौका निकाला नौका में बैठ गए, और वह जो केवट है अपने आप नौका को किनारे लगा देता। पर हमें इतना तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा मौका निकालना पड़ेगा, नौका में बैठना पड़ेगा। यहां पर बड़े बड़े महापुरुषों ने, स्वनाम धन्य प्रेमपुरी जी महाराज, स्वनाम धन्य खंडानी महाराज ने बड़ा सुंदर नौका लगा दिया है। हमारे कैलाश के महाराज जी कहते थे बार बार कि प्रेमपुरी संस्था को पल्लवित पुष्पित करने वाले हैं बच्चू भाई, और एक और थे ना, क्या ना, हरि भाई, हरकिशन दास जी अग्रवाल, बोले दोनों हरिहर की जोड़ी, और दोनों ने इतना इस संस्था को पल्लवित पुष्पित किया है, अब कुछ करना नहीं, केवल आपको मौका निकालकर नौका में बैठ जाना है। आप बैठ जाओ, फिर अपने आप महापुरुष आपके इस नौका को किनारे लगा देंगे। इतना तो करना पड़ेगा ना भाई, मौका तो निकालना पड़ेगा, ये हजारों काम है, हजारों कते शतम विहाय भोक्तव्यम, सौ काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। सहस्त्रम भी आए, हजार काम छोड़कर स्नान आदि आराम करना चाहिए। सर्वम विहाय, सब कुछ छोड़कर हरिमाश्रित भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो भाई देखो, आपको जरा सा मौका निकालना पड़ेगा, सिर्फ दो घंटा प्रातः काल नौका में बैठ जाएंगे, नौका को आचार्य शंकर शोक सागर से पार लगा देंगे। विश्वेश पादाम बुझ दीर्घ नौका, ये नौका बहुत लंबी चौड़ी है, इसलिए दीर्घ शब्द का प्रयोग किया। देखो शब्दों का प्रयोग कितना वैज्ञानिक है। यदि मान लो कृष्ण बोलते, शिव बोलते, विष्णु बोलते, है ना, नारायण बोलते, देवी बोलते, हनुमान बोलते, तो दूसरे बोलते भाई अपने तो आराध्य फला है, अपने काम के चीनी। यहां कह रहे विश्वेश पादाम्बुज, विश्वेश आप सबको ले सकते, विश्व का जो नियंता मालिक वह नारायण भी हो सकते, भगवती देवी भी, भगवान शंकर भी, श्री कृष्ण भी, राम भी, हनुमान जी। जितने पुराण पढ़ो, प्रत्येक पुराण में मिलेगा, जैसे देवी पुराण है, सारे सृष्टि भगवती देवी से हुई। देवी पुराण में त्रिपुरा शब्द आता है, त्रिपुरा का अर्थ किया त्रिभ्या पुरा त्रिपुरा, तीन का अर्थ किया ब्रह्मा विष्णु रुद्रेभ्य, पुरा मतलब पहले, जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र से पहले अनादि शक्ति उसका नाम भगवती त्रिपुरा आदि शक्ति। देव पुराण ने बताया कि देखो भाई, पूरा ब्रह्मांड का जो मालिक स्वामिनी वह भगवती है, उससे संसार का सृजन होता, पालन होता, संहार होता। आप पड़ोसी पुराण तो क्या मिलेगा, पूरा ब्रह्मांड भगवान शंकर के कृपा कटाक्ष से निर्माण हुआ, विष्णु पुराण भगवान विष्णु से, और गणपति पुराण में सब गणेश जी से। इसका मतलब समझे, इसका अर्थ यह है, एक ही चैतन्य इस संसार का निर्माण करता है, उसमें इतनी सामर्थ, कभी गणपति बन गया, कभी शिव बन गया, विष्णु बन गया, नारायण बन गया, हनुमान बन गया। इसलिए आप कहते हैं विश्वेश, संसार के जो स्वामी, जो आपके आराध्य, उनके चरण कमल को पकड़ लेना आपको। जैसे आप अपने अभिमान को भगवान के चरणों में विसर्जित कर देते हैं, परम आनंद का अनुभव होने लग जाता। प्रत्येक दिन रात को सोने के पहले आप तमस के कारण अपने अभिमान को थोड़े समय के लिए जरा विसर्जित कर देते, छोड़ देते। जब आप निद्रा में जाते हैं तो आपको महसूस नहीं होता कि मैं फला हूं, फला जगह सो रहा हूं। कई बार तो भ्रांति होती है कि मैं कहां सो रहा हूं, दो मिनट के बाद मालूम पड़ता है कि हाँ बंबई में फला जगह सो रहा हूं। जैसे आंख खुली, आंख खोलते त्रिपुटी सामने खड़ी हो गई। त्रिपुटी बोलते हैं कर्ता कर्म और करण, ज्ञाता ज्ञान गे ध्याता ध्यान दे। त्रिपुटी के आते आप नाचने लग गए, फिर आप सुखी दुखी होने लग गए। जैसे त्रिपुटी का विलय हुआ सुषुप्ति में, आप परम आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं। जरा भी भान नहीं होता है कि मैं पापी हूं, पुण्यात्मा हूं। उपनिषद में लिखा स्तेनो अस्तेनो भवति पुलकसो पुलकसो भवति। प्रत्येक प्राणी सब कुछ विस्मित हो जाता है, परम आनंद में डूब जाता है, क्योंकि आपका निज स्वरूप आनंदमय है। पर हम अज्ञान से इस शरीर में अभिमान कर लेते कि यह मैं हूं। इसी मैं पना के कारण आप संसार सागर में बार बार डूबते हैं, कभी उतर ऊपर कभी नीचे आते जाते हैं। वही बता रहे कि भाई अभिमान को परमात्मा के चरणों में विसर्जित कर दो, विसर्जित करते परम आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। तो क्या उत्तर दिया, आचार्य ने कि आप विश्वेश पादाम पूज दीर्घ नौका, लोग कहते हैं ना महापुरुष लोग, जब उखल में सर को डाला ही है तो मूसल से क्या डरना, अब मूसल तो पड़ना ही है। ऐसे जब संसार में जन्म हो ही गया है, जब जन्म हुआ है तो जरूर आपको संसार की उपाधियां व्याधियों को झेलना ही पड़ेगा। तो झेलना है तो कैसे झेले, जब आप भगवान के चरणों को पकड़ लेंगे तो पकड़ने के बाद वह जो उपाधियां व्याधियां हैं आपको बाल बाका नहीं कर पाएंगी। जिस प्रकार से रात में 0 वाट का बल्ब भी कितना रोशनी फैलाता, बहुत ज्यादा, और दिन के 12 बजे 500 वाट का बल्ब भी अपने वर्तुल तक टिमटिमाता रहता, नीचे रोशनी आती। ऐसे जितना आपके हृदय में अज्ञान अंधकार का साम्राज्य छाता जाएगा उतना ही छोटा सा दुख भी बड़ा भारी आपको परेशानी में डाल देता। और आपके हृदय में जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाता है मारदंड का, तो बड़ा से बड़ा दुख भी बिल्कुल प्रतीत नहीं होता। दुख तो होगा प्रारब्ध से पर बिल्कुल महसूस नहीं होगा, क्योंकि तो आपके हृदय में सूर्य के समान ब्रह्म ज्ञान जो स्वयं प्रकाश है वह रोशनी प्रकाशित हो गई। तो संसार का जो दुख है चित्त को प्रभावित नहीं कर पाता है, इसलिए क्या करना है तो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना। अब दूसरा प्रश्न कर रहे, बद्धो ही को यो विषयानुरागी कावा विमुक्तिर विषये विरक्ति ही को वास्ति घोरो नरक स्वदेह तृष्णाक्षय स्वर्ग पदम किमस्ति। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव बताओ बद्धो ही को यो, संसार में बंधन को कौन प्राप्त किया हुआ है, बद्ध जीव कौन है और मुक्त जीव कौन है। जिस प्रकार से आप अपने प्यारे पशु को बांधकर घर में रखते हैं, क्यों बांधते हैं, पशु जो है ना दूध दे रहा, गाय दूध न दे तो आप उसको छोड़ देंगे जंगल में, जाने दो। जब गाय दूध देती तो आप हरा भरा चारा खिलाते, दाना खिलाते, पानी पिलाते, सेवा करते। आप गाय के लिए गाय की सेवा नहीं, वो तो बहुत कम लोग होते जो संस्कारी गौ माता मां की सेवा करते, परंतु सामान्य प्राणी जो पामर जीव है वह दूध के स्वार्थ से गौ की सेवा करता, रस्सी से बांध कर रखता। ऐसी दुनिया वाले जब देखते हैं ना आप उनके काम आ रहे हैं, अनुकूल हैं, तो बिल्कुल आपको बांध के रखते कि आप मेरे फलाना लगेंगे जी, आपका ये कर्तव्य है, ऐसा आपको बोलते रहते। तो विषयानुरागी बद्ध, जिसको विषय में अनुराग है वही बद्ध प्राणी है। विषय किसे बोलते हैं तो कहते हैं विविध प्रकारेण, देखो बी उपसर्ग है, शिय बंधने धातु है, मूर्धन्य सकार है, शिय बंधने और बी उपसर्ग, तो बी का अर्थ है विविध प्रकारेण, शिय बंधने का अर्थ है सिनोती बधनाति इति विषय। जो आपको विविध प्रकार से जो बांधे उसका नाम विषय है। अब आंख है, आपको रूप ने बांध लिया, रूप को आप देखकर बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है, ऐसा समझकर आप बंध गए कि हमारे अनुकूल है। कान का बंधन शब्द है, पैर का बंधन गमनागमन है, हाथ का बंधन देन लेन है, चित्त का बंधन है विषय का चिंतन। तो सारी इंद्रियां विषयों में बंध जाती, क्यों बनती है तो अनुराग। जब आप विषयों से राग करते ना, राग बोलते रंज रागे से राग बनता, रंज रागे से राग। एक स्यार था, जंगल में घूम रहा था, बड़ा बेचारा भूखा। अब जंगल में जंगली कुत्तों ने उसे दौड़ाया, वो भागते भागते जान बचाकर धोबी के वो कुंड में गिर पड़ा। अब धोबी का जो कुंड था उसमें अनेक प्रकार के रंग बिरंग से भर रखा था, वो स्यार हो गया नीला। जब बाहर निकला दिन में तो नीला नीला, जब जंगल में गया तो सभी ने क्या समझा, अजीबो गरीब कोई प्राणी है, था तो स्यार। सब डर के सामने, भाई बताओ तुम कौन हो। स्यार बहुत चतुर प्राणी होता, उसने कहा कि मैं जो है ना इस जंगल का राजा, ब्रह्मा जी ने हमें इस जंगल का राजा बनाकर भेजा है, अब तो सब उसकी चाकरी करने लगे। अब जैसे एक दिन उसके जाति वाले ने हुआ हुआ किया, वैसे उसको रहा नहीं गया, वो भी हुआ हुआ शुरू किया, कहा अरे तो श्यार है, इतने में उसका काम तमाम कर दिया शेर ने। वही हालत हमारी है, जैसे श्रृंगाल रंग के कुंड में जब पड़ा तो उसका बिल्कुल नीला रंग हो गया, ऐसे जीवात्मा बिल्कुल सच्चिदानंद है, जिसको आप पंद्रशी में सुन चुके हैं, चित्तम चित इति बिजानीयात तकारो रहितम यदा तकारो विषयाध्यास पुष्पराग यथा हिमण। ये चित्त क्या है, एक होता चित्त में डबलता है, एक में सिंगलता। सिंगलता वाला तो चेतन का वातक है सच्चिदानंद का, जो डबलता है ना चित्त उसका अर्थ है अंतःकरण। तो जो ये जो डबलता है ना, ये डबलता ही वो चित्त से आपको चित्त बना दिया, जीवात्मा बना दिया। तो चित्तम चित इति बिजानियात, आपका चित्त चेतन स्वरूप है, पर बीच में ना ये आधा तकार आ गया, आधा तकार आपको अधूरा बना दिया। आधा तकार क्या है, तकारो ही विषयाध्यास, विषय के अध्यास को ही तकार कहते हैं, तकारो ही विषयाध्यास। एक दृष्टांत देके समझाया पंदसी कार ने, कि जैसे सामने कोई स्फटिक मणि है, बड़ी सुंदर मणि, उज्जवल मणि है, रोशनी आ रहा, उस मणि के सामने किसी ने नीला फूल रख दिया। अब फूल आते ही मणि में नीलिमा प्रतीत होने लग गई, उसका उज्जवल स्वरूप ढक गया। ऐसे आप तो मणि के समान बिल्कुल चेतन स्वरूप हैं, पर बीच में जो तकार आया वो जो है नील फूल के समान विषयाध्यास, वही आपको जीवात्मा बना दिया, चिदाभास बना दिया। तो यदि आप इस विषयाध्यास को, अध्यास बोलते अतस्मि तद्बुद्धि, जैसे मान लो सामने एक बालक का पिंड है, ब्रह्मा जी ने छोटा सा गोल मटोल बालक बनाया, पर बालक के पिंड में अनेक प्रकार की वृत्तियों से अनेक प्रकार से फल उत्पन्न होते, पंचभूतात्मक पंच वर्ष का सामने एक बालक का सुंदर शरीर है, वह बालक माता पिता के लिए श्याम सुंदर है, लाडला है, वही बालक शत्रु के लिए वह दुश्मन है, सौत के लिए वह डा है कि बड़ा होगा तो जो है ना ये घर का मालिक बन जाएगा, हमें तो कोई पुत्र ही नहीं है। बालक में कोई दोष नहीं, परंतु सौतिया डा होने से उस बालक से ईर्ष्या होने लगी, सौत को शत्रु को द्वेष हो रहा, अन्य प्राणी के लिए मोहक मोह उत्पन्न कर रहा, माता पिता के लिए वात्सल्य, तो बालक एक पंचभूतात्मक पिंड है जिसकी जैसी मनोवृत्ति वैसा उससे फल उत्पन्न हो रहा। सौतिया को देखने से डाह हो रहा, अब शेर को देखने से मुख में लार आएगा पानी के, बड़ा सुंदर मेरा भोजन है। माता पिता को वात्सल भाव होगा और भगत के लिए साक्षात श्याम सुंदर है। वही योगी के आंखों से देखो तो हाड़ मांस चाम का पुतला, और वेदांति के दृष्टि से क्या है बताओ? वेदांति आप लोग है ना, वेदांति के दृष्टि से वह आनंद ब्रह्म है। बालक कैसा? आनंद ब्रह्म है। इसी बात को योग दर्शन में कहा, वस्तु साम्येपि चित्त भेदात विभक्त पंथा। वस्तु साम एक ही पिंड है बालक का, पर आपके चित्त के भेद होने से अनेक प्रकार के फल होते, किसी को काम, किसी को क्रोध, किसी को लोभ, किसी को मोह, किसी को द्वेष, किसी को वासल, किसी को आनंद का अनुभव। तो देखो बालक के पिंड का कोई दोष है? दोष हमारे दृष्टि का, विचार का। श्री वेदांत कहता है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, और वेदांत देखो सबके लिए है। वेदांत में किसी समाज, मजहब, धर्म, संप्रदाय, पंथ का बिल्कुल अनुबंध नहीं, मतलब शर्त नहीं, सबके लिए। क्योंकि वेदांत का प्रतिपाद्य परम आनंद है, जो वेदांत उसका प्रतिपाद्य परम आनंद है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में परम आनंद को पाना चाहते, ऐसा आनंद जो आनंद कभी किसी प्रकार से हमसे अलग न हो, न कभी छीना जाए, ऐसा आनंद आप चाहते हैं। एक विद्यार्थी क्यों पढ़ता है? उसे लोगों ने समझा दिया कि भाई तू पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा धन कमाएगा, अच्छा मकान बनाएगा, फिर परम आनंद आएगा, मौज आनंद। उसे मालूम पड़ जाए कि पढ़ाई से नौकरी नहीं मिलनी तो पढ़ना बंद कर देगा, व्यापार में लग जाएगा। अब व्यापार में क्यों लगा? कि मालूम है कि व्यापार से धन आएगा, धन से आनंद, मजा आता। तो प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में आनंद को चाहता है। यह दूसरी बात है कि हमारी दौड़ जो है ना विपरीत दिशा में है, विपरीत जानते ना, उल्टा। एक पहलवान था, प्रातःकाल उठा 4 बजे, उन्होंने कहा आज मुझे सबसे पहले भगवान सूर्य का दर्शन करना, सूर्य षष्ठी, सूर्य षष्ठी के दिन सूर्य का दर्शन करना बड़ा पुण्य होता। वह दौड़ लगाया पूरी ताकत से, दौड़ते दौड़ते पसीना सराबोर हो गया, परंतु भगवान सूर्य का दर्शन नहीं हुआ। जब थक गया तो पास में एक भले मानस थे, भले मानस ने पूछा बता तू कहां दौड़ लगा रहा भाई, क्या चाहता? उस आदमी ने कहा हमें आज सबसे पहले भगवान सूर्य का दर्शन करना। भले मानस ने कहा भाई तू दौड़ कहां रहा? बोला सीधे दौड़ना सूर्य को पाने के लिए। बोला जरा गर्दन तो घुमा, जैसे घुमाया सामने भगवान सूर्य। बोला बड़ी कृपा आपकी, आपने बड़ी कृपा किया जो भगवान सूर्य का दर्शन करा दिया। उस आदमी की दौड़ थी विपरीत दिशा, बिल्कुल वही हालत हमारी। हम भी परम आनंद को चाहते, सभी आनंद चाहते। दुखम मा भूयात, दुख न हो, परम आनंद मिले, यह आप चाहते हैं। तो दौड़ हमारी कहां पता? पश्चिम। जैसे पश्चिम दौड़ा था ना पहलवान, वैसे हमारी हालत। जब हम थक जाते हैं, कोई भला मानस मिलता है तो क्या बोलता है? जरा सम्मुख हो जाओ, रामायण में आता है ना, सम्मुख होय जीव मोहि जबही, जन्म कोट यज्ञ नासहुं तबही। जैसे आप भगवान के सम्मुख हो जाते, सामने सम्मुख होते ही आपके समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती। तो नारायण आप तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, परंतु इस विषया शक्ति के कारण से हम संसार में भटक रहे हैं। तो पूछा कि बद्दोई कोयो, बंधन में कौन पड़ा है? उत्तर क्या दिया? बद्दोई कोयो विषयानुरागी कावा विमुक्ति विषये विरक्ति। जो विषय में अनुराग, इसी का नाम बंधन। विषय किसी को बांधता नहीं, पकड़ता नहीं, मारता नहीं। विषय तो जड़ है, आप तो चेतन है, परंतु हमारी मनोवृत्ति विषय की तरफ जाती है, उससे चिपक जाती, इसी का नाम बंधन। वो महात्मा लोग सुनाते ना, एक बड़े विरक्त महात्मा जंगल में भजन किया करते, वेदांत को उपदेश देते थे। लोगों ने कहा, महाराज आपके बात सब सही है, हम आत्मा हैं, कुटस्थ है, ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, पर क्या करे, माया छोड़ती नहीं। ये जो माया है ना, माया छोड़ती नहीं, दुनिया वाले छोड़ते ही नहीं, ये संसार छोड़ता ही नहीं। बाबा जी ने कहा कि ऐसे नहीं मानेगा, कुछ करना पड़ेगा। प्रातः काल बिल्कुल तड़के 4 बजे बड़े भारी पेड़ को बाबा जी पकड़ लिए, लगे चिल्लाने, बचाओ बचाओ, ये पेड़ मुझे पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा है, जोर से पकड़ लिया। सभा बोले, महाराज क्या हुआ? बोले, तुम तमाशा देख रहे? अरे पेड़ मुझे पकड़ लिया, पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा। बोले, महाराज पेड़ को आपने पकड़ा है, पेड़ आपको नहीं पकड़ा। बोले, अरे देखो तो ये पकड़ा, तुम लोग क्या बातें कर रहे, तो जरा सा हाथ आप ऐसे ही कर दो, आपको पेड़ छोड़ देगा। बोले, बस तुम भी हाथ ऐसे कर दो, जैसे मुझे बोल रहे ना वैसे ऐसे कर दो। तो पेड़ जैसे मुझे नहीं पकड़ सकता, ऐसे माया ये विषय पदार्थ आपको नहीं पकड़े, आपने उनको पकड़ रखा। पर हमारी भ्रांति क्या, हम क्या कहते, अजी क्या करे, घर वाले छोड़ते नहीं, दुनिया वाले छोड़ते नहीं। मैं तो बहुत चाहता हूं कि प्रातः काल प्रेम पूरी आऊं, सत्संग सुनू, अपना कल्याण करूं, फिर भी क्या बोलते घर वाले कि परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम। 18 पुराणों का वचन, 18 पुराणस्य व्यासस्य वचनद्वयम्। भगवान वेद व्यास के 2 वचन हैं, कौन से वचन? परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। देखो जी, परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं, पर पीड़ा के समान कोई पाप नहीं। एक घर में सीमान चले, चलो मैं प्रेम पूरी सत्संग सुने, शनिवार का दिन, पत्नी ने कहा अच्छी बात है जाओ, मैं रोकती नहीं, पर देखो जी हमने ज्यादा तो नहीं सत्संग सुनी, पर कभी सुना हमने कि परोपकार पुण्याय, वो भी किसने सुनाया? 18 पुराणों के कर्ता वेद व्यास जी ने, कि सारे 18 पुराणों का सार निचोल है कि परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं, पर पीड़ा के समान कोई पाप नहीं। तो आप जा रहे हो, देखो साक्षात श्याम सुंदर के समान आपका बेटा, बालक भगवान होते, ये रो रहा, पापा जी कहां जा रहे, क्यों जा रहे छोड़कर मुझे। बोला, ठीक है भाई तू बोल रही तो नहीं जाता हूं, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद पत्नी बोली, अजी आज बड़ा सुंदर एक पिक्चर लगा है शनिवार के समय, चलो चलते हैं। धाई को बुलाया, ले संभाल इसको, दोनों चल पड़े। और वहां परोपकार पुण्याय नहीं काम किया, वहां छोड़कर चल पड़े। तो मनुष्य बड़ा होशियार है, कई बार क्या करता है ना कि सारे संसार के नियम कानून कायदा शास्त्रों को भी अपने फायदे के लिए लगा देता है, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ा परोपकार है आत्म कल्याण, इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं। तो विषय मतलब कि जो आपको अपने में बांध कर रखे, विषयम विश्ववत मत्वा जही, आचार्य शंकर कहते भाई ये विषय विष के समान, सांप का जहर बिच्छू का डंक तो आपको जब मारता तो एक ही जन्म, पर विषय रूपी जो विष है वह जो जहर है हजारों जन्मों तक भटकाता है। इसलिए कहा कि विषय विषवत मत्वा विषयम त्यजेत, विषय को विष के समान समझकर उसे त्याग देना चाहिए। अब आप त्याग नहीं सकते तो एक उपाय और है, क्या बताया उपाय, क्या वैसा करो सर्वम खलुमिदम ब्रह्म। दोनों उपाय है, पहला उपाय है कि विषय को विष के समान समझकर विषय को छोड़ दो, आप छोड़ नहीं सकते तो दूसरा रास्ता बताया कि सर्वम खलुविदम ब्रह्म विश्वम ब्रह्म, इस श्रुति वाक्य विश्वम ब्रह्म आत्मै इदम सर्वम, पूरा विश्व ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा मानकर भी आप विषय के जहर से बच सकते हैं। आपको महाराज प्रमाण क्या है, तो कलयुग का प्रमाण है, मीरा को राणा ने जहर का प्याला भेजा, ये घटना सतयुग नहीं कलयुग की है, घोर कलयुग की घटना है। राणा ने कहा कि ले जाओ दे दो मीरा को कि श्याम सुंदर का प्रसाद, मीरा ने उस जहर के प्याले को श्याम सुंदर का प्रसाद समझकर पान कर गई, बाल बाका नहीं हुआ। तुरंत राणा ने बुलाया वैद्य को, बोला तूने हमारे साथ छल कपट किया, बताओ कैसा जहर दिया उसका बाल बाका नहीं हुआ। वैद्य ने कहा महाराज वो तो भगवान की भक्ता, भगवान ने बचा लिया, मैं तो उसके बर्तन को धोकर पीऊं तो मर जाऊंगा। कहा तो धोकर पी सामने हमारे, जैसे बर्तन धोया वैसे पिया, जय जय सीताराम हो गया। सोचो तो मीरा के भक्ति से विष का प्याला भी अमृत बन गया। तो आप प्रत्येक विषय में जो भी विषय विष के समान है उसको आप अमृत बना सकते, कैसे, उपनिषद की भाषा में कहा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, प्रत्येक रूप में क्या समझो कि भगवान का स्वरूप है, जो भी सुनो क्या समझो कि भगवान का स्तोत्र है। मतलब कि जो भी आप देखो सुनो समझो उसमें भगवत दृष्टि भगवत विचार चेतन का चिंतन। महाराष्ट्र में एक बार संकीर्तन हो रहा था, रात को सब अभंग का पाठ कर रहे थे और कीर्तन कर रहे थे, जोर से प्यास लगी, कहा भाई कुएं से जल लाओ, गला सूख रहा। सबने कहा महाराज हमारे बस की बात नहीं, बड़ा भारी भूत रहता है उस बावड़ी पर, सबने मना कर दिया। नामदेव कहा कि महाराज आप बहुत बड़े भगवान के भगत हैं, आप ही जाओ। नामदेव जी ने कहा चलो कोई बात नहीं मैं ही जाता हूं, घड़ा उठाए चल पड़े, जैसे बावड़ी में घड़ा को डुबाया वैसे भयंकर भूत प्रकट हो गया। भूत को देखकर नामदेव जी वहीं पर लगे कीर्तन करने, जय जय लंबक नारायण लंबक नारायण, आकाश पृथ्वी तल रूप छायो जय जय लंबक नारायण, आप साक्षात नारायण वो आकाश पाताल में रूप छाया, बड़े सुंदर आपने आज स्वरूप बनाया। वहीं से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान ने कहा तूने यहां भी ढूंढ लिया, नामदेव ने कहा महाराज बताओ आप कहां नहीं हो, आप तो कणकण में हो तो भूत में भी तापी हो। जब भगवान भूत के शरीर में हो सकता है तो विचार करो, माता पिता गुरु बंधु बांधव मित्र शत्रु के पिंड में भी तो वही है। किसी के माथे पर मित्र लिखा न शत्रु लिखा है, हमारी अनुकूल बुद्धि होने से उसे मित्र मान लेते, प्रतिकूल बुद्धि होने से शत्रु मान लेते। सिर्फ अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण से शत्रु और मित्र का व्यवहार हो रहा, पर दोनों में एक ही चैतन्य, दो चैतन्य है ही नहीं। तो भाई यदि आपको विषय में राग है, एक उपाय है कि आप क्या करो कि विषय को ब्रह्म का स्वरूप समझ लो, सब ब्रह्मी ब्रह्म है। ऐसा समझने से भी, ऐसी दृष्टि आने पर भी आप विषय से मुक्त हो जाएंगे। कावा विमुक्ति, शिष्य ने पूछा कि आपने बता तो दिया कि विषय में अनुराग करने का नाम बंधन है, बार बार जिस चीज का याद आए समझना कि हमारी उसमें अनुराग है। आप बैठे भगवान की भक्ति कर रहे, नमः शिवाय जप कर रहे, राम राम कर रहे, पर हमारी मनोवृत्ति कहां जा रही, किसी विषय विशेष के प्रति, समझना कि इसमें हमारा अनुराग है। तो दो उपाय है, एक उपाय है कि उस विषय का परीक्षण करो कि विषय क्या चीज है, यहाँ मां चाम का पुतला है, अनित्य है, क्षणिक है, कान में कनफूल है, नाक में नकटी है, आंख में कीचड़ है, ये मुख में लाला है, हाड़ मां चाम का पुतला है। ऐसा चिंतन करने से भी राग दूर हो जाता है। दूसरा उपाय है उसमें चैतन्य का चिंतन करना, ये साक्षात चैतन्य का स्वरूप है। दोनों उपाय है, नाम रूप का परित्याग करके चैतन्य का चिंतन, या उस विषय की वस्तु स्थिति का परीक्षण। दोनों ही प्रकार से आप वैराग्य भाव प्राप्त करके वहां पर परमात्मा का दर्शन कर सकते। कावा विमुक्ति, विमुक्ति कैसे होगी, इसका विषय विरक्ति। विषय से राग के अभाव का नाम ही है मोक्ष। पर राग को दूर करने का उपाय है कि परमात्मा के चरणों को कस के पकड़ लो, उसको नहीं पकड़ सकते ना, तो आप प्रेम पूरी सत्संग मंडल को कस के पकड़ लो। कभी न कभी तो जरूर जब ज्ञान की मूसलाधार वर्षा होगी तो कोई न कोई बूंद जरूर जाएगा, उस बूंद से आपका कल्याण हो जाएगा। शेष कल सुनेंगे। ओम शांति शांति शांति।